चौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुपते प्रणमामि हरि। हा देवी काकुः भरपद गदयाद्यवाच जाते निपत्त भूमि दंडवत उद्भटार्ति अस्याः प्रसादमभुतस्य जलस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे
अंगश्यामलिंथकाभिरवितो मन्दे कृतेन्दु वरम् जाग्रं जागुदरोचितं विदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं मृदुलसद्दामाभिरामोदरम् राधाकस्कन्दनिवेशितज्वलभुजं ध्यायेन् भक्त्या विहीना परार्थलक्ष्यै चित्तास्तु कामादितरङ्गमध्यै कृतामयी त्वां शरणं प्रपन्ना
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यन्त्रध्वजं तमनुते तमपेतकृत्यं दैतायनो विरहकात्तर्यजुहव पुत्रेति तन्मे तया सर्वोऽभिने सर्वभूतहृदयम्
तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति देव्याय राधीतं मे माम् पण्डित आदि चतुर्थ परिच्छेद। कल हमने विशुद्ध सत्व शुद्ध सत्व सत्व मिश्र सत्व ये सबके संबंध में बतलाया। इसको जानने से भगवत तत्व जीव तत्व माया तत्व के संबंध में ज्ञान होगा और हम लोग भजन में प्रवेश करें, इसलिए बतलाए गए। हम नाम करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, किंतु हम जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में हैं। हमारा अनर्थ दूर नहीं हुआ, तामसिक राजसिक ये सब भाव बढ़ते जाए चले जाए तो कुछ विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी भक्ति में बढ़ करके हमारा हमारी अवनति हो रही है तब हमारे अंदर में कुछ दोष है। जो लोग ऐसा विचार करके भजन करेंगे वो लोग तो धीरे धीरे कर्मोन्नति करेंगे, उनकी श्रद्धा निष्ठा होगी, निष्ठा से रुचि इत्यादि बढ़ेगी। और जो लोग इस पर विचार नहीं करके कई श्रवण कीर्तन करते हैं तो उससे होगा क्या, शेख जल पाइया उनका शाखा बाढ़ी जाए, मूल शाखा शब्द हैया बाही तैना। हम जल सिंचन करते हैं किंतु उपशाखाओं का छेदन नहीं करते, अनर्थों का छेदन नहीं करते तो उपशाखा बढ़ जाएगी और भक्ति रूपी मूल लता है वो तब बढ़ जाएगी, वो उसी में ढक करके पीली होकर के फिर नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये विचार करना चाहिए सब समय जो हम भजन कर रहे हैं तो हमें राजसिक तामसिक भाव बढ़ रहा है, चित्त में अशांति हो रही है, ये सब विचार करना चाहिए अच्छी तरह से। हमारी दृष्टि कौन से भगवान में लग रही है, वैष्णव की सेवा में लग रही है कि उल्टी चल रही है। जब ये सब तत्वों का हम विचार करेंगे, विशुद्ध तत्व शुद्ध तत्व मिश्र तत्व सत्व जड़ सत्व, ये सब तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जाएगा, समझेंगे इसलिए मध्यम अधिकार इसी को कहते हैं। जब तक ये ऐसे विचार न आए हमारी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं, और ये कौन से भक्त हैं श्रेणी के उत्तम मध्यम कनिष्ठ, या ये कैसे हैं ये कैसे हैं, ये विचार नहीं होगा और हम अभी कहां पर स्थिर हैं, ये विचार नहीं होगा तभी मध्यम अधिकार नहीं, अभी कनिष्ठ में। इसलिए कनिष्ठ से मध्यम में चलने की चेष्टा करनी चाहिए, जहां पर ये सब तत्वों का ज्ञान परिपूर्ण रूप से हो, अनर्थ दूर हो जाए, समझो कि अपरिपक्व मध्यम मध्यम अधिकार आया। आज जब तक ये नहीं चल रहा है तो समझो कि हम लोग अभी कनिष्ठ अधिकार में, कनिष्ठ अधिकार में भी बहुत से तारतम्य है। सरल श्रद्धा है, सेवा वृत्ति है, ये तो कनिष्ठ है। उस समय में भगवत सेवा में, वैष्णव की सेवा में, वैष्णव के आस्थापन में ये सब विचार नहीं होता, किंतु श्रद्धा तो शुद्ध रहती है। श्रद्धा तमसा सात्विक तामसिक भाव को दूर करेगी धीरे 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 राशि, और इसके बाद में सात्विक गुण को लाएगी, सात्विक गुण को भी दूर करके निर्गुण बुद्धि लाएगी, निर्गुण से तमसा भक्ति में प्रवेश करेगी। इस पर सब समय हम लोगों को विचार करना चाहिए। कभी कभी होता है कि आते समय में श्रद्धा तो ठीक रहती है और पीछे से कुछ दिनों के बाद में छोड़ करके चले जाते हैं, कहते हैं कि ये साधु संघ नहीं दोष है, हम ठीक है पूरे। तो ये दिन रात इन सब कथाओं को जो सुन रहे हैं हम लोग, उस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, समझने की नहीं समझ में आ रहा है वैष्णव से पूछेंगे जो समझे, इसका नाम तो साधन है। इसलिए इस पद पर आओ, कृष्णेर भगवत्ता ज्ञान संविदेर सा। हमने ये जो विशुद्ध सत्व किसको बतलाया फिर से देखो, भगवान की पराशक्ति की वह वृत्ति विशेष, भगवान की पराशक्ति या स्वरूप शक्ति की स्वतः प्रकाश लक्षण में वह वृत्ति विशेष जिसके द्वारा भगवान स्वयं इनकी स्वरूप शक्ति और चीत वैशिष्ट इत्यादि का आविर्भाव होता है, ये जीव गोस्वामी का विचार है। जीव गोस्वामी ऐसा कहते हैं स्वरूप शक्ति की, अंतरंगा शक्ति की वह स्वतः प्रकाश लक्षण में विशेष वृत्ति, वो तो मनुष्य स्वरूप शक्ति ही है किंतु उस स्वरूप शक्ति की विशेष वृत्ति जिसके द्वारा भगवान स्वयं उनकी स्वरूप शक्ति और चित वैशिष्ट इत्यादि का आविर्भाव होता है। कृष्ण स्वयं मुरलीधर श्याम सुंदर नटवर क्या नवकिशोर नटवर ये जो शक्ति राधिका जी और वैशिष्ट मन्ना रासलीला इत्यादि उनकी काय विभा जो गोपियां हैं ये सब जिनका विर्भाव होता है वो विशुद्ध शुद्ध जिसकी वृत्ति के द्वारा, उस वृत्ति का नाम इसके संबंध में विशेष रूप में बतलाया था। केवल ये समझो भगवान की कृष्ण की सचित आनंद नामक शक्ति अपनी पूर्ण सीमा तक जहां पर प्रकाशित होती है वो है स्वरूप शक्ति की ये वृत्ति, तीनों तीनों की पराकाष्ठा तक प्रकाशित रहती है वो वृत्ति है। उसी में से एक केवल संधिनी जो है जब वो प्रधान होकर के उसका सार होता है तो वही होता है शुद्ध संघ। इसलिए यहां पर बतला संधिनी सार अंश संधिनी का और विशुद्ध सिद्ध सत्व का सुख शक्ति की वह वृत्ति जिसके द्वारा कृष्ण स्वयं कृष्ण उनकी स्वरूप शक्ति और चित वैशिष्ट रास इत्यादि लीलाएं और शक्ति के प्रकाशित होते हैं वो विशुद्ध सत्व है। उसी की एक वृत्ति संजीवनी और उसके सार को कहते हैं शुद्ध सत्व। सुन लो अभी नहीं आएगा समझ में। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं सुनो और सुन करके तर्क मत करो, अभी विचार करो। तर्क और विचार में अंतर है। वस्तु को जो लिखा है उसको सत्य मान करके उसको समझने के लिए जो विवेचना करते हैं वो तो विवेचना के द्वारा समझना अनुगत में गुरु परंपरा के विचारों के अंतर्गत उन्होंने जिन जिन शास्त्रों का अनुमोदन किया है उनको लेकर के जो विचार करके समझने की चेष्टा करते हैं वो समझ में आ जाएगा। आज जब अपने तर्क इत्यादि के द्वारा मनुष्य मेधा जीव मेधा के अनुसार में जब विचार करेंगे तो ये समझ में नहीं आए। क्या करें उसको सत्य मान करके हरि नाम को रोको हरे कृष्ण दिन रात, कथाओं को श्रवण करो हरि कथा को, भगवान की शरणागति करो गुरु जी की शरणागति और सेवा जितना ही करेंगे हमारा चित्त अंश निर्मल होता जाएगा और उन चीजों को धीरे धीरे समझे। जगह भर में भी ऐसा ही लिखा पढ़ करके समझ लेंगे ऐसा नहीं होगा। तो वो है संधि निसार अंश शुद्ध सत्प्राण भगवान सत्ता जहां है जहां पे विस्तार भगवान की सत्ता जिससे प्रकाशित होती है वो हुआ विशुद्ध सत्व है ना। और भगवान की सत्ता जहां में विश्राम करती है थोड़ा सा और समझे आधार शक्ति वो सब सत्ताओं को प्रकाश करने वाली है। माता भाई बंधु इत्यादि को प्रकाशित करके वो शक्ति और फिर क्या करती है उनके प्रेम का ही आस्वादन करती है कराती है भगवान करते हैं उसमें विश्राम उनका होता है। जी गोस्वामी ने एक विचार दिया है जो बैकुंठ में परब्रह्म नारायण है उनके यहां श्री भू लीला तीन शक्ति है ना ये सर्व शक्ति के ही प्रकाश है। इसमें भू माने क्या होता है हुआ क्या हुआ जन्म जो सृष्टि करने वाली है प्रकाशित करने वाली है यह हुआ भू। श्री माने पालन शक्ति है इसलिए वो सुंदर है पालन करने वाली है रक्षा करने वाली है ये रक्षा करती है पालन पोषण कर। और नीला शक्ति नीला जो शक्ति है माने ये काली नीली है ये दुर्गा है ये जगत संहारकारिणी है उसी की तीन छायाएं जगत में ये सब तीनों काम करती है पालन पोषण करना और पालन पोषण करना सृष्टि करने वाली और एक संहार करने वाली दुर्गा जगत रूपी दुर्ग को ये दुष्ट करने वाली जो विरोधी जीव हो जाते हैं भगवान को भूल जाते हैं उनको नाना तरह से कष्ट इत्यादि देकर के ताप देकर के और उनको भगवान की तरफ ले देंगे। माता पिता स्थान गृह शय्यासन आद ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार ये शुद्ध सत्व का विकार है। क्या ये संधनी से किंतु हो रहा है उसका विकार है क्या उनके शरीरों को जितने भी वैकुंठ जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ने वाले सत्ता युक्त वस्तुएं हैं ये इसी से परिणित होकर क्या यहां पर विकार उस जगत में विकार नहीं होता दूध से दही दही विकार करके फिर दही खराब होकर के क्या हो जाती है अंत खूब खट्टी हो जाती दही और कुछ दिन रख दो तो क्या होगी क्रिया होगा कि और विकृत हो जाएगी। इसी तरह से जगत में विकार होता है और वहां पर विकार होता है कृष्ण के प्रणय का विकार, विकार माने और घनत्व घनीभूत अवस्था। जैसे दूध विकृत होकर के राबड़ी बन गया तो ये क्या हुआ? नहीं, ये दूध घनत्व होकर के हुआ। आप दही विकृत होकर के सड़ गई तो ये विकार हो गया। ये सब शुद्ध सत्य विकार, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम इत्यादि बताया। भगवान का स्वरूप, भगवान की स्वरूप शक्ति संघनी के प्रभाव से शुद्ध सत्य रूप जो नित्य तत्व है उसका नाम वसुदेव है। शेष शुद्ध सत्य, उसी शुद्ध सत्य में चैतन्य स्वरूप भगवान नित्य प्रकाश लाभ करते हैं। तारी नाम वासुदेव, वे जड़ी और माइक समस्त इंद्रियों के अतीत हैं। भक्ति पुत्र चित्त में मैं उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूं। कल शंकर जी की यह बात हमने बताया था, दक्ष प्रजापति की बात को बतलाते हैं। कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संबितोर सार, अब संदरी का तो बतलाया और बतला रहे हैं संबित। संवेदन, संबित माने संवेदन, संवेदन माने क्या? जिसे संवेदना अनुभूति इत्यादि होती है। तो कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान जो होता है भगवत तत्व ज्ञान, कृष्ण अव्य ज्ञान पर तत्व है, ये सब जो ज्ञान है संबित सार, यह संबित का ये सार है। और भी तत्व ज्ञान होने पर भगवान के अंदर में और उनके परिकरों के अंदर में परस्पर जो प्रीति का भाव है, यह भाव अपनी उच्चतम अवस्था तक, यह सब संबित है। जहां तक हो भाव, उसकी अनुभूतियां जहां तक होती है, यह सब उन्हें उसमें ज्ञान भाव के रूप में परिणत हो जाता है। यह सब एक तरह का ज्ञान ही है, निम्न बीज मध्यम और उन्नत। ब्रह्म ज्ञान आदि सब कहा परिवार, ब्रह्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान इत्यादि जब है उसके सब परिवार उसके अधीन है।
भगवान
और जब भूल जाते हैं अपने को तो वो जो वो हाँ भाई महाभाव इत्यादि वो योग माया का कार्य। लादनी सार, अब लादनी का सार प्रेम, प्रेम सार भाव। लादनी का सार हुआ प्रेम और प्रेम का सार हुआ भाव। देखो जो महाभाव इत्यादि जो है ना, अकेला लादिनी नहीं है। जो भाव जो बतलाया गया ये क्या चीज है? संबित और लादिनी दोनों मिलकर भाव होता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, तो दोनों चीजें रहनी चाहिए। किंतु होगा किसके ऊपर? संबनी के ऊपर में। इसलिए संधुनी का प्रकाश यदि हम लोगों के हृदय में न हो, इसका प्रकाश कैसा होगा? जब भगवान की संधुनी शक्ति का प्रकाश यहां होगा तब हमारे अंदर में जो अभी लुप्त रूप में वो जो संधुनी शक्ति है वो रूप धारण करके प्रकाशित हो जाएगी। उसी तरह से हमारी हलादनी जो आंशिक है उसके ऊपर में जो ब्रह्म ज्ञान है उसके ऊपर में संबित का सार जब प्रकटित होगा
तो ये भी आगे बढ़कर के सिद्ध हो जाएगा, विकसित होकर। और हमारे जीवत जो आनंद है ब्रह्मानंद, इसके ऊपर नहीं है। याग्नि का सार जब आएगा और संदनी का, तब ये प्रेमानंद सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावे रे पराकाष्ठा न महाभाव। ये अभी श्रद्धा इत्यादि जीवगत संबित का भाव है और हरादमी का, यही बढ़ते 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 निष्ठा होगा, ये बढ़ करके फिर हुआ रुचि, रुचि होने के बाद में आसक्ति, अब इसमें पात्रता आई, यही पर शुद्ध सत्व। भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव। समुद्र सार माने जो गन्ना है, गन्ना जानता है, गन्ना का सार है वो शीतोत्पल मिश्रित, ऐसे पराकाष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। भक्त विनोद ठाकुर जी अमृत प्रवाह में लिख रहे हैं संबित क्रिया नाम ज्ञान। दशा दो है जीव और कृष्ण, कृष्ण का दर्शन पूर्ण ज्ञान है, उनके संवेदन कार्य में कोई अंतर नहीं है, वो जो कुछ जानते हैं जनाते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, किंतु हम लोगों के अंतर है, अंतर क्या अज्ञानता, अज्ञानता से तो न कुछ हम लोग जानते हैं ठीक से और न कोई जना सकते हैं। अभी हम कुछ जनाएंगे तो इसमें कुछ गलती हो सकती है, कोई मुक्त पुरुष होगा जिसमें कोई इस ज्ञान में कोई अंतर नहीं है तो नहीं होगा। अभी ये लोग मुक्त महापुरुष हैं, ये जना रहे हैं ठीक, किंतु हम उसको पकड़ने की भी शक्ति नहीं है, यह किस लिए अंतर है, भगवान के अंदर में कोई व्यवधान नहीं है। जैसे देखो अजीव गोस्वामी का देख रहा था मैं, परमात्म संदर्भ भगवत दोनों में कोई देख, उन्होंने ये लिखा जो 16,000 रानियों के साथ में द्वारकापुरी में उन्होंने शादी की, ठीक है, जो शादी की, और नारद जी ने देखा एक एक घर में एक एक ना, देखा ना, तो आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित ये हुए जो नारद जी का भी कार्य जो है, तो अपना कार्य तो जानते हैं और ऋषियों के मुनियों के भी कार्यों को जानते हैं, किंतु ये अद्भुत दिखा, एक कृष्ण ही 16,000 रानियों के घरों में दिख रहे हैं और कहीं विवाह हो रहा है, कहीं दान कर रहे हैं, कभी माता पिता विवाह करा रहे हैं, कभी कुछ, कभी कहीं कहीं कुछ, अलग अलग उनको देखकर क्या आश्चर्य हुआ, क्या आश्चर्य हुआ, मतलब किस लिए उनको हुआ,
विभिन्न रूप में
एक ही कृष्ण, दो कृष्ण है नहीं, एक ही कृष्ण है और सर्वत्र ये काम कर, माने क्या क्या बात कर, कृष्ण दो नहीं, कहीं भी दो नहीं देखा, उनका प्रकाश भी नहीं देखा, एक ही कृष्ण को देखा, आरा समझ में तो कुछ नहीं, एक ही कृष्ण है, जैसे एक ही कृष्ण एक एक गोपी के पास में अलग अलग दिखता है, किंतु दो कृष्ण नहीं है, एक ही कृष्ण है किंतु दिख रहे हैं वैसे। अब हमने बताया किंतु समझा नहीं, इसको ऐसे समझो। हम लोग कहां गए थे, बरसाना में, एक साधु ने कहा हमारे यहां ठहरिए, हम लोग उसके यहां ठहरे उधर वाली धर्मशाला, हमारा जी आज हम आरती करेंगे आपके दर्शन की। तो देखाया क्या, इधर देख रहे हैं लंबी कतार में कृष्ण और इधर में राधा कृष्ण लंबी कतार, जिधर देखते हैं उधर ही में कृष्ण दिखे, किंतु फोटो एक ही है, वो कैसे दिख रहा है? तो वो एक ही कृष्ण है कि अलग अलग वो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं? जिधर नजर करते हैं उधर वही कृष्ण दिखते हैं, यही भगवान की विशेषता है। रास में भी ऐसा हुआ, एक ही कृष्ण है, दो नहीं, इधर में कुछ है, इधर में जब को साधक देखता है तो इधर भी देखता है, इधर देख रहा है, इधर देखता है वही कृष्ण, इधर किंतु मूर्ति एक ही है। यही तो समझना बड़ा टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर। आप देख रहे हैं कि अलग अलग कृष्ण, किंतु अलग कृष्ण नहीं, एक ही कृष्ण है। कैसे अभी बुद्धि में नहीं आएगा जैसे, किंतु हाँ है ठीक, यही ठीक है। उन्होंने समझाया है हम लोगों को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया, क्षिप्र गति से एक ही कृष्ण जब उधर जाते हैं तो उधर दिखते हैं। इसका तो समझाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है अभी इस स्थिति में, नहीं अभी यही तो समझना है।
बहुरूप धारण करते
ना, बहुरूप धारण करें, एक ही कृष्ण ना, कानून कृष्ण कहाँ नहीं है, एक ही कृष्ण है, दो नहीं, किंतु साधक वहीं से देखता है, अरे भाई वही कृष्ण देखो, किंतु वही कृष्ण है। नहीं भाई, समझने की चेष्टा करो, समझने, यही तो भगवान की विशेषता है, यही तरह किंतु सब जगह दिख रहे हैं। जैसे साधारण एक जीव किसी अंग के शरीर के एक अंग में प्रकाशित रहने पर भी सर्वत्र वो उसकी अनुभूति दिख पड़ती है, ये साधारण एक चीज कृष्ण की। इसलिए महाराज जी को ये हुआ, एक ही कृष्ण है अस्त्र ये दिख पड़ते हैं कैसे, बहुत उन्होंने रूप धारण नहीं किया, वो तो एक ही जगह एक ही है, तो वहां वहां कहां केवल नहीं, विश्व के सर्वत्र भागों में सर्वत्र एक ही कृष्ण दिखता है, यही उनकी विशेष। जी गोस्वामी ने इस चीज को बतलाने की चेष्टा की, बहुरूप धारण करे नहीं है, वो समझाने के लिए वैसे ही था। जी गोस्वामी ने इसी को विचार करके बतलाया, और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ठाकुर भी इसी तक को बतलाने के लिए वो उदाहरण देते हैं कि एक ही कृष्ण जब इधर देखता है तो इधर आ जाते हैं, उसको भी के पास में उधर आ जाते हैं।
जिस आदमी को जिस घर में जगह उसके आदि कृष्ण
है,
जिस आदमी जिस घर में जगह जाता
है यही कृष्ण की विशेषता है। ये तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, कृष्ण इतना धारण करने आश्चर्य का क्या बात है, लड़की के लिए आश्चर्य की क्या बात, उनको कोई आश्चर्य हुआ क्या, आश्चर्य है यही भाई, एक ही कृष्ण यहां पर भी दिख रहे हैं, यहां पर भी दिख रहे हैं, यहां पर भी दिख रहे हैं, ये कैसे हो
गया?
थोड़ी सत्ता तो भाई तरह पड़ो, चैतन्य चैतामित पढ़ते हेले और ये काया ग्रंथ इटा हे छाया, मतलब छाया मैंने आबार बुझे ना आबार खड़ा, वो उसी से दिया गया है, जीव गोस्वामी के संदर्भ से ये सब दिया गया, ये सब ध्यान तत्व का वर्णन है। रस तत्व दिया कहां से, रूप और रघुनाथ इत्यादि के विचार से, सब दामोदर इत्यादि जितना तत्व है सब वहां से लिया, और कोई उपाय नहीं है कहीं किसी कहीं का, इसलिए इसको समझ लो इतना सहजनीय, यदि तुम्हें समझ लिया हम समझ जाते हो तो आश्चर्य क्या रहा, नारद जी तो हमारे एकदम परम मुक्त है, उनको किस लिए आश्चर्य हुआ, यदि अलग अलग रूप है तो हम ही को आश्चर्य नहीं है की व्यक्ति से हम समझ भी गए तो फिर साधन की जरूरत क्या रही क्या जरूरत रही यदि कृष्ण यहाँ पर प्रकाशित हैं अपना ये प्रकाश कर दिया
नारद
का आश्चर्य
क्या
यही तो महापुरुषों में कोई करोगे तो बहुत सुधारण कर सकते हैं इसमें आश्चर्य
की
क्या बात ये तो जानते ही हाँ। इसलिए उनको ये आश्चर्य हुआ भाई कैसे एक ही ये कैसे सब जगह दिखता है
ब्रह्मांड
यही उनकी जो माया की अत्यंत घटन पतन शक्ति है उसी से
अनंत
ब्रह्मांड ही समझिए इसके बाद में पीछे समझेंगे आगे कहा जीव गोस्वामी इसी शक्ति को इतने अन्नों में उसको सैकड़ों तेजों में इस चीज को समझाने की चेष्टा की है एक ही तो महाभाव स्वरूपासी राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि जब देखेंगे हम लोग सूक्ष्म विचार से तो कृष्ण का एक एक कार्य अत्यंत चमत्कारपूर्ण है उसको छोड़ दो जड़ वैभव में एक चीटी के ऊपर में हम विचार करें चीटी कैसे चलती है कैसे उसका जन्म होता है उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग कैसे हैं उसके अंदर में भी सूक्ष्म स्वरूप आत्मा आत्मा और सूक्ष्म शरीर कारण इत्यादि सब शरीर जो कैसे सब है एकदम चमत्कार हो जाएगा तो उस जगत का वैभव ज्ञान अंत एवं यही पर उन्होंने ब्रह्मा जी ने हार करके थक करके ना पड़ता है ये सब अधिक जानने के लिए वो कहते हैं अधिक तुम जान नहीं सकोगे अधिक जानो मत हाँ जहां तक शास्त्रों ने जलाया है हरि कथा के माध्यम से उतना तक समझते चले जाओ पृथक रूप में चेष्टा मत करो अब ये देखो श्रद्धा ही ले लो श्रद्धा क्या चीज है इस जगत की कोई चीज है ना कुछ और है इस जगत की कोई चीज ही नहीं है श्रद्धा प्रेम रूपी लता का ये बीज है ना बतलाया गया है भक्ति का ये बीज बतलाया गया भक्ति माने शुद्धा भक्ति शुद्धा भक्ति माने क्या कोई प्रेमा भक्ति उसका ये बीज है इसलिए ये बीज भी साधारण चीज नहीं है ये भी सर्वशक्ति की ही वृत्ति समझो वही सर्वशक्ति ने भगवान का आस्वादन कराने के लिए इसको भी बीज रूप में फेंका है यही धीरे 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 बढ़ता हुआ निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि तक ले गए और महाभाव स्वरूपा ही यहीं पर नहीं इसमें जो रूढ़ है उसको भी छोड़ दो वो सब में है सब गोपियों में इसके बाद में अधिरूढ़ में भी विभाग है उसमें से स्पेशल जो है मादन इत्यादि भाव मोदन इत्यादि मोदन एंड मादन जो राधिका का अतिरिक्त तो कहीं नहीं है वही महाभाव राधा जी का स्वरूप सर्वगुण खनि उनका यह शरीर हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने बतलाया है उनका अंग प्रत्यंग भाव मुद्रा जो कुछ है अंतर बाहर यह सब कुछ महाभाव का बना अर्थात कृष्ण प्रेम का कृष्ण से बना है सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि कयो अपि उभयो मध्ये राधिका सर्वात्मिका महाभाव संपेयम गुणै अति बरीयसी यह बतलाया गया है उज्जवल मणि में ये कहीं का श्लोक है कयो अपि उभयो मध्ये समस्त गोपियों में दो गोपियां श्रेष्ठ हैं एक है चंद्रावली दूसरी है राधिका और दोनों में सर्वाधिकार सर्वथाधिकार सबसे अधिक महाभाव स्वरूपा यम यम माने श्रीमती राधिका गुण अति बरियसी गुण रूप सब विषयों में श्रेष्ठ और कृष्ण की प्रिया हिंदे कृष्ण प्रेम भावित जार चित्त इंद्रिय काय चित्त इंद्रिय काय हम लोगों में अभी चित्त इंद्रिय काय अलग अलग है शरीर जड़ है मन बुद्धि अहंकार चित्त इत्यादि चेतना भास है चित्त क्या है प्रकृति का सबसे सूक्ष्म पर्दा जिसमें भगवान का भी दर्शन होता है शुद्ध रहने पर वो महत्त्व अथवा चित्त कहते हैं एक होता चित्त खंड पर और एक होता चित्त डबल पर डबल चित्त ये प्रकृति का पहला आवरण सूक्ष्म ये निर्मल होने पर भगवत दर्शन तभी बंधन अवस्था है और जब ये दूर हो जाता है तब ये शुद्ध हो तब भगवत दर्शन इत्यादि होता है तो कृष्ण प्रेम भावित या चित्त इंद्रिय का उनका शरीर इंद्रिय चित्त आत्मा जो कुछ है सब कृष्ण भावित प्रेम का रूप है वो स्नान करती है आभरण पहनती है भूषण धारण करती ये सब क्या है ये भी कृष्ण प्रेम स्वरूप कृष्ण निज शक्ति कृष्ण भावित प्रेम भावित याचित इंद्रिय का तो ये बतला रहा था अमृत प्रवाह पढ़ रहा था जीव के दर्शन में बहुत से अंतराय हैं अनेक बाधाएं हैं इसलिए कभी कोई कृष्ण को ब्रह्म देखता है कभी निर्विशेष देखता है ब्रह्म कभी परमात्मा के रूप में देखता है इसके बाद में तब उनको कभी कोई कोई कृष्ण के रूप में देखता है और माया होने पर अविद्या के द्वारा ग्रस्त होने पर वो कोई तीनों में से कोई चीज नहीं दिखता बस ये शरीर केवल दिखता है आत्मा और मन भी नहीं दिखाई देता ये ज्ञान तीन प्रकार के हैं साक्षात ज्ञान व्यतिरेक ज्ञान विकृत ज्ञान जड़ संबंध में जड़ विषयों के संबंध में जीवों की जड़ इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो कभी भी निर्मल नहीं होता इसलिए वो विकृत होता है इसलिए हम जो देख रहे हैं कि ये चल रहे हैं फिर हैं ये ऐसे हैं वैसे हैं ये सब हमारा ज्ञान अभी इसके अतिरिक्त हमें शुद्ध ज्ञान नहीं माया शक्ति गत संबित का यह ज्ञान है जड़ ज्ञान है प्रकृति का ज्ञान जड़ भित्रे जड़ नहीं है निर्विशेष ज्ञान जड़ ज्ञान के संबंधाश्रित होने के कारण क्षुद्र है यह जो ज्ञान है जड़ व्यतिरिक्त जड़ नहीं है किंतु अभी चिन्मय भी नहीं है चित भी नहीं है बीच में क्या है यह तटस्थ है अभी इस ज्ञान के द्वारा जीवगत संबित शक्ति का कार्य है जीवगत जो संबित उसका यह कार्य है अतो असंपूर्ण वो क्षुद्र असंपूर्ण है यही सकल ज्ञान नाम ब्रह्म ज्ञान इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान जीव के अंदर में आत्मज्ञान भी इसको कहते हैं और निर्विशेष ज्ञान भी कहते हैं किंतु ये तीनों अलग अलग है निर्विशेष ज्ञान आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक ही के अंतर्गत में तीन वैशिष्ट युक्त है अभेद ज्ञान भी इसको कह सकते हैं जिस समय में ब्रह्म ज्ञान होता है उसमें जीव अपने तत्व को देखता है भगवत तत्व को नहीं और परमात्मा को जब देखता है तो उनका अंश देखता है और स्वयं कृष्ण को जब देखता है तो साक्षात रूप में दर्शन करता है चित्तगत संबित शक्ति वो जब ईश्वर शक्ति वाली जब हलाग्नि के सहित मिल करके जीव पर कृपा करती है तब कृष्ण का भगवत का ज्ञान जनता है भाई। क्या बतलाया? चिदगत, चित स्वरूपगत जो स्वरूप शक्ति है उसके अंदर की हिलाजनी और संधि संधि दोनों मिल करके जब कृपा करती है जीवों पर तब भगवत्ता का ज्ञान जन्म ग्रहण करता है। अतएव कहा संबित सार, वही संबित का सार है। ब्रह्म ज्ञान और विशेष ज्ञान उनका ये परिवार है। अवस्था भेद से आवरण मात्र है, आवरण है केवल। संबित
के साथ क्यों
ज्ञान भगवत तत्व का ज्ञान लाग्नि क्रिया का नाम भक्तिविनोद ठाकुर कारण ये सबको समझने की कोशिश करो। लाग्नि क्रिया नाम प्रेम, लाग्नि की क्रिया अर्थात ये प्रेम है। वही प्रेम
मते सती पुत्रमत्रस्वरूपम्
राधा कुंदम गिरिवर महो राधिका माथवासम प्राप्त पति कृपयासि गुरुं तं नतोऽस्मि। पञ्चाकल्पकृभ्यश्च कृतासिन्धुर्भवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
नमः। श्री चैतन्य चैतन्य आदि चतुर्थ संभूत का सार शुद्ध सत्व, संभूत का सार भगवत तत्व ज्ञान, रागनी का सार प्रेम और विशुद्ध सत्व। जब ये तीनों अपने पूर्ण अवस्था में कृष्ण में रहे अपनी अंतिम पराकाष्ठा पर संभूत संभूत रागनी अर्थात संधनी के ऊपर में संबित और लागिन, उस समय में इसकी एक विशेष वृत्ति जो जो भगवान स्वयं भगवान उनकी स्वरूप शक्ति अथवा चित वैशिष्ट इत्यादि का आविर्भाव कराती है उसको विशिष्ट का विशेष शब्द विशुद्ध शब्द का। अब उसको बतला रहे हैं माँ स्वरूपा, माँ भाव स्वरूपा राधा ठाकुरानी यदि कल हो गया था सर्वगुण खनि कृष्ण कामतास भवन कृष्ण प्रेम भाव विद्यार्थी प्रेम दिए का कृष्ण भी जो शक्ति राधा क्रीड़ा रहा है आनंद चिन्ह में सप्रतिभाविकाधिकाधी एवं जमुक तया कलाधी गोलोक जीवन सप्त अखिलात्म हो तो गोविंद माध पुरुषम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पंचम चतुर्थ जो कारण है मां पर उनके आविर्भूत होने का उसका भी दिग्बंध कर रहे हैं जिसमें चतुर्थ श्लोक राधा कृष्ण प्रणय राधा या प्रणय ये चतुर्थ और पंचम है राधा कृष्ण प्रणय जी तो उसी को समझाने के लिए प्रणय विकृति इत्यादि जो तीन चीजें हैं वो क्या हैं और राधा कृष्ण की प्रणय विकृति हुई इस चीज को किस प्रकार से आस्वादन करने के लिए कृष्ण के अंदर में लोग हुआ वो आए इसी की ये भूमिका दे रहे हैं। हमने कल बतलाया था श्रद्धा भक्ति लता का बीज है श्रद्धा जिसकी श्रद्धा ही पुष्ट नहीं हुई वो क्या चीज समझेगा इसे नहीं समझेगा इसलिए श्रद्धा पुष्ट होगी अनर्थ दूर हो रहा निष्ठा आएगी क्रमशः रुचि आएगी और भी अनर्थ का जो गंध है वो भी दूर हो जाए तब आसक्ति आएगी आसक्ति में क्षेत्र तैयार होता है शुद्ध सत्व का। जब शुद्ध सत्व का क्षेत्र तैयार हो जाएगा तो वहां पर संदिग्ध और संधिनी का सार जीव गत संधिनी के ऊपर में प्रतिफलित होगा। तब ये जाकर के शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व को उठाना है क्या है भाव के लिए विशेषात्मा इत्यादि जो बताया। तो शुद्ध सत्व दो प्रकार का है, यहां पर सत्व बतलाया जबकि परिभाषा कर रहे हैं भाव। कृष्ण विभावित जब चित्त होता है तो उसको कहते हैं सत्व। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के द्वारा चित्त जब एकदम आकृष्ट हो जाता तब वो रुचि के द्वारा, रुचि माने क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए जो रुचि होती है उस रुचि के द्वारा इसको विभावित करता है, द्रवित करता है। ममता होती है किंतु थोड़ी, तब ये जाकर के शुद्ध सत्व वहां पर उदित होता है। इसलिए ये साधन सापेक्ष, साधन करना चाहिए। साधन नहीं होने से भगवान की कृपा भी नहीं होगी, केवल भगवान की कृपा के ऊपर में बैठा भी नहीं रहा जा सकता। इसलिए अपना जो कर्तव्य है साधन भजन ये सब करना है। इसलिए मैं बार बार ध्यान देता हूं, संसारी की ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह मास्टर, इनको जहां तक हो सके दूर करने की चेष्टा करो हरिनाम और हरि कथा के माध्यम से, और किसी चीज से दूर नहीं हो, चेष्टा से नहीं। जब दूर होगा तो धीरे धीरे ये सब चीजें आएंगी, तो ये नहीं होगा भी नहीं। इसलिए जो धर्म इत्यादि में ऐसा बतलाया गया भजन के द्वारा इन सब चीज को समझने की चेष्टा करो, अपने आप उपरोक्त परिणत होगा। प्रचोदयात परिष्ट रूप में आप उदित हो ऐसी प्रार्थना तो होनी चाहिए ना, वो जैसे हैं वैसे उदित हो जाएंगे। ये है भगवान की शरणागति के ऊपर में ये सब चीजें। इसलिए ये सब खूब सावधानी के साथ में करनी चाहिए, स्वाहा अर्पित करना चाहिए ना। हमन को सभी करते हैं किंतु ये हमन होना चाहिए, अपनी सब प्रवृत्तियों को स्वाहा करके फिर अंत में अपने हृदय को कृष्ण के चरणों में, तब ये चीजें प्रकाशित होंगी। इसलिए मंत्र सापेक्ष, इसलिए गुरु वैष्णव हमें मंत्र देते हैं। जितना ही सावधानी के साथ में श्रद्धा के साथ में ये सब किया जाएगा, कोई संदेह इत्यादि नहीं रह जाएगा, अपने आप वस्तु जैसी है अपने को प्रकाशित कर देगी। जैसे महाप्रभु जी ने कहा था, मैं ये मंत्र कर रहा और वो एक छोटा सा बालक बहुत सुंदर श्याम सुंदर आया हमारे सामने, मैं पकड़ने के लिए दौड़ा और वो छुटता हुआ चला गया, अंत में हाथ बढ़ाया मैंने पकड़ने के लिए तो वो मैंने सिधर में चला, मैं भी पड़ा। जब ये बातें आती हैं तो मैं रोता हूं, भूमि भूरलखन करता हूं, मैं ये जानता नहीं कि मैं क्या कर रहा। यही क्रम जीवों के साधन में होगा, यही क्रम देखा जाता है बिल्व मंगल इत्यादि के, भरत जी के रूप गोस्वामी ने जो वर्णन किया है उसमें हमारे भक्तों का ये सब देखा जाता है। अपराधिक चीज है वो द्रवित होकर के हृदय में आएगी, यह बड़ा क्या और किसी संसारिक चेष्टा इत्यादि के द्वारा नहीं आएगी, वो सब प्रकाश है। कल बतलाया था सब प्रकाश है। अभी श्रद्धा ही नहीं आ रही और हम लोग बातचीत कर रहे हैं महाभाव स्वरूप नतिराधिका का स्वरूप सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। यहां पर कृष्ण कांता का मतलब ही यह है, कांता कौन है, कांता और स्त्री में कुछ पार्थक्य है। स्त्री मर्यादा पूर्वक पति की अधीन होती है और कांत कांता का अधीन होता है, इसलिए यहां पर कांता शब्द का हाँ एकदम उल्टा हो जाता है, ऐसा होता है। काम ता कांता उसी के द्वारा काम हमें अप्राकृत प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, उसके समस्त ऐसे गुण हैं, ऐसी सेवा है प्रेममयी सेवा जिसमें उनका हृदय मन शरीर जो कुछ भावना है सब किस प्रीति से बने हुए हैं, उसे कृष्ण के चित्त को हरण कर लेती हूँ, इसलिए कांता शिरोमणि है। सर्वगुण खनी जैसे कृष्ण सब गुणों की खनी है, यदि सब गुणों की खनी है कृष्ण प्रेम भावित जार चित्त इंद्रिय का है, इसको रघुनाथ दास गोस्वामी अथवा रूप गोस्वामी ने बतलाया, पूरी स्नान और समस्त कृष्ण प्रेम का जितना प्रेम उसी से राधा जी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग वस्त्र सिंदूर से लेकर के आभरण सब कुछ उसी का बना है। जैसे बलदेव जी बने हैं ना आसन बसन भूषण, ये सब बलदेव जी बने हैं, और यहां पर राधा जी कौन बना है, कृष्ण के जितने भी प्रीति के ये भाव हैं वो सब एक एक करके राधा जी के सिंह अंग बने, राधा प्रेम कृष्ण प्रेम का अतिरिक्त उनका कुछ है ही नहीं है। कृष्ण प्रेम में भावित यार चित्त इंद्रिय का साधक जब बहुत उन्नत हो जाता है, अभी हम लोग अर्चन करते हैं उसमें याद रहती है कि नहीं जो मैं अर्चक हूं और ये हमारे अच्छा विग्रह है, याद रहती है कि नहीं रहते हैं, मैं अर्चक हूं अर्चन करने वाला अर्चन कर रहा हूं, वो प्रभु बड़े ऊंचे हैं मैं बहुत नीच हूं, बहुत से अर्चक तो हैं उनका कोई संबंध ज्ञान ही नहीं, वो केवल भक्ति ऐसे कर देंगे ठाकुर जी के सामने वो एक लाना देखा जो भोग रख देते हैं, कैसे वो खाते हैं नहीं खाते हैं भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं इस पर भी दृष्टि नहीं रहती, इसलिए एक बार ऐसे चर्चा छिड़ी थी गुरु महाराज जी के सामने, कुछ गुरु लोग हैं वो लोगों के द्वारा दिए हुए भोग को नहीं लेते अपने आप लगाते हैं,
बहुत से लोग ऐसे
पुजारी नहीं आचार्य लोग जो शिष्यों के भी दिए हुए चीज को नहीं मानते हैं, क्यों काटे नहीं है बतलाते नहीं है किंतु लेते नहीं, उनको पृथक से दे दिया जाता है वो भावना करके जो कुछ कर करके खा लेते, और कुछ लोग करते हैं चतुर्विदासी भगत प्रसाद हो स्वदन तृप्तान हरिभक्त संधान कृतय तृप्त भजत सदैव वंदे गुरु, गुरु जी क्या करते हैं सब कुछ भोग देते हैं और भक्तों को भी आस्वादन कराते हैं अपने भी उच्छिष्ट को ग्रहण करने, किंतु ठाकुर जी का भोग कौन लगाएगा, कौन स्तर वाला व्यक्ति लगाएगा, हजार प्रकार के अनर्थ काम क्रोध वहां पर जा रहा है और क्रोध कर रहा है, देश जिनके हृदय में है ये लगाएगा भोग, इसलिए इसे बहुत से अनर्थ खड़े हो जाते हैं, ये सब विचार करना चाहिए, इसलिए अर्चन वो सीधा सर्वी नहीं है। हां तब एक बात है, यदि उस समय उनके शरणागत होकर के गुरु जी को और उनको बुलाए और उनको कहे जैसे आप भोग दीजिए और वो कृपा करके आए और वो भोग लगाए वो उनको खिलाए तब हो सकता है, किंतु इसके लिए भी तो कुछ चाहिए कि ऐसा ही हो जाएगा, इसलिए पुजारी भी उसी तरह का हो गुरु का सेवक भी ऐसा हो, उनका तो मध्यम अधिकारी हो। अपरूपा जी कहते हैं जैसे 100,000 जो नाम करते हैं वो भोग दें, ऐसा करने वाले तो मिलेंगे ही, बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा है पहले पहले ये सब चीजें थी, दिन रात हरिनाम कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी की कथा सुन रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो प्रसाद में कोई संदेह नहीं है। और नहीं कामिक को भी लोग यदि भोग दे और वो प्रसाद पाएगा तो क्या होगा, काम क्रोध लोभ आप ये सब बढ़ेगा, इसलिए जहां तक हो सके भोग देते समय में, ठाकुर जी का अर्चन करते समय इन सब चीजों को दूर रखते हुए चेष्टा करते हुए शरणागत होकर के रोते हुए ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए या ठाकुर जी का अर्चन करना चाहिए। यदि प्रेम से किया तो उसको ग्रहण कर लें, और एक कोई कर्तव्य समझ करके फाल दिया है या बत्ती जला करके ऐसे कर दिया है, ऐसे दिया एक पैर भीतर एक पैर में बाहर तो गड़बड़ी। मध्यम अधिकार होना भी सहज नहीं है, बहुत हम लोग उसके लिए आए हैं, तब समय विचार कर लिया तब तक इन चीजों को हम लोग समझे। सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि, राधिका जी कृष्ण को प्रसन्न कर रही हैं और कांता बनी हैं, उनके समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं और कृष्ण को वशीभूत कर लेती हैं, उनके प्रति ये भावों के प्रति तो लोभ होना चाहिए ना, हम भी वैसे ऐसे ही भगवान के हम सेवक हों, गुरु के सेवक हों, इस सबका तात्पर्य यह है। कृष्ण प्रेम भावित, अभी हम प्रेम भावित नहीं तो एक चीज को कहने जा रहा, अभी अचक समझता है जिसे मैं अर्चन कर रहा हूं, मंत्र में विभावित नहीं होता, जैसे अष्टाक्षर मंत्र या अष्टदशाक्षर मंत्र भावित विभावित होकर के उस समय में करता है, एकदम चिंतन करता हुआ उसमें रम जाता है, उसमें रमने के समय में यदि ये हो अपने को भूल जाए जो मैं स्थूल शरीर वाला हूं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी से उपमंजरी पथिता में पुंसा परस्य बदन नहीं पश्य सिंह, किस अवस्था में कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, इस भावना से कह रहे हैं ना, मैं रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक को उच्चारण कर रहा हूं इस रूप में, आखिर भूल गए हैं अपने को, भूल गए हैं, फूल रघुनाथ दास सब तो भूल गया है ही नहीं, इसलिए साधक को ऐसी स्थिति में आने की चेष्टा करनी चाहिए, धीरे धीरे विभावित होकर प्रभु से एक प्रार्थना ऐसा कर, सब क्रियाओं के समय में चाहे संध्या हो, ठाकुर जी का अर्चन हो, रसोई हो, गुरु सेवा हो, वैष्णव सेवा हो, ये सब भावनाएं चाहिए, और नहीं तो कपटता इत्यादि संसारिक चीजें बात है। राधा जी कैसे सेवा करती हैं, कृष्ण सोचते हैं यदि थोड़ा सा इनका मान से अक्रोध से मुख जरा दिखू तो देखू क्या कहती, तो वो क्या करेंगे, कोई बहाना बना करके कृष्ण पर मान कर लेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, मुख टेढ़ा कर लेंगे, कृष्ण बैठे हैं और बात नहीं हो रही, कृष्ण किसी प्रकार से उनसे बात करने की चेष्टा, ये क्या है, ये भी राधा जी की सेवा है, उत्कृष्ट बहुत अति, हे प्रभु हे कृष्ण आप मेरे पति हैं, आप मेरे प्रियतम हैं, आप प्रसन्न हो जाइए, कहेंगे तो प्रसन्न होंगे न कि कृष्ण स्वयं ऐसा कहने लगे, आप प्रसन्न हो जाइए, इसलिए कृष्ण प्रेम भावित याचित इंद्रिय का है, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा सहाय, कृष्ण की अपनी शक्ति है, कृष्ण क्रीड़ा की क्या है, बसती नगर में यहां पर सहाय लिखा है, वही एक ही सब तात्पर्य है। अभी हम लोग रिहर्सल में हैं, साधन माने क्या रिहर्सल, गुरु जी को मान लो कृष्ण ही, राधा मान लो गुरु कृष्ण गुरु को ही, और उसी रूप में उनकी सेवा करने की प्रारंभिक रूप से प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब अपनी अपना सुख अपना दुख अपना ये सब मान अपमान को धराग देश कुछ नहीं रहा, ऐसे ही हमसे बात है, यही से आरंभ। हम लोग बात बात के लिए तुनक करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, कुछ देश भी होता है, ये सब है। महात्मा जी की या प्रभुपाद की इच्छा थी सब लोग एक एक आदर्श बने, ब्रह्मचारी लोग सन्यासी सब विषय संसार के लोग आए तो यहां पर शांति पाए दो मिनट के लिए। वाह इतना सुंदर वातावरण, इतनी सुंदर हरि कथा होती है, एक एक ब्रह्मचारी का जीवन एक एक आदर्श है। संसारिक छल कपटता और कुछ लेने की स्पृहा है, तब तो हमारे विचारों को ग्रहण करेंगे ना, कैसे करेंगे। आए तेल ही बोल दिया, अरे जरा पानी पी जाओ घर में पी दो, यहाँ पर पानी सब लोग लिए रखा है, पानी पीने का नौकरी करने के लिए घर छोड़ करके आए हैं। इसी तरह से किसी भी विषय में कितना सरल शांत बात, तब तो ये सब चीज समझेंगे वैसा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कृष्ण प्रेम भावी, जब गुरु की सेवा करना है तो क्या करना होगा, गुरु प्रेम भावी। वैष्णव की सेवा करना होगा, कृष्ण के ये परिकर है और वो भी वैसा ही होना चाहिए, वो वैष्णव भी वैसा होना चाहिए, एक तरफा नहीं है, दोनों होना चाहिए। इसलिए हम इसलिए चेष्टा करनी चाहिए, विषय इच्छा या कवे शुद्ध भवे मन कवे यानी बुझब सी वृंदावन, तब वो बुझेंगे। अभी भी पूरा नहीं बुझा, अभी तो बुझना हुआ, अभी मन शुद्ध है, जब ये शुद्ध मन भी हट जाएगा, शुद्ध सत्व तो वहां पर आ जाएगा, पहले तदात्म होगा, इसके बाद मन को वहां से खदर देगा और खुद वहां पर बन बैठेगा। आयास मन ने क्या कहा, इन सब वृत्तियों को हटा देगा, अभी मन, इसके बाद में क्रोध लोभ ये सब अभी रहेगा, किंतु शुद्ध होकर के। नरोत्तम ठाकुर ने कहा जैसे लोभ कहां रहेगा, रहेगा लोभ की स्थिति रहेगी किंतु उसका डिरेक्शन बदल जाएगा। लोभ कैसा रहेगा, हरि कथा श्रवण में, इसी तरह से सभी चीजें बदल जाए। क्रोध कहां होगा, भक्त विद्वेषी के क्रोध रहेगा, किंतु जब शुद्ध सत्व आ जाएगा तब क्या होगा, ये सब चीजें समूल सदा के लिए वो हट जाएंगी, वहां पर शुद्ध सत्व प्रकाशित होगा, प्रेम प्रकाशित होगा, प्रेम का आभास भाव। कृष्ण निज शक्ति, राधा क्या है, अपनी स्वरूप शक्ति है, लागनी शक्ति है, लागनी कहने से थोड़ा सा कम हो जाता है क्या, संभित और संधनी का यहां पर नहीं माना, किंतु ऐसा नहीं, राधा जी क्या है,
सच्चिदानंदमय,
वो सब जैसे कृष्ण है ऐसे राधा जी, उनमें संभित भी है संधनी भी है, सब कुछ है जैसे कृष्ण में है, क्रीड़ा सहाय नहीं होगा तो कृष्ण सहाय किसको कहते हैं, बिना सहायता के वो काम नहीं होता जिससे, उसको कहते हैं सहाय। राधा जी नहीं रहेंगी कृष्ण की क्रीड़ा में, क्यों, इतनी लाखों गोपियां रहेंगी कृष्ण क्यों नहीं होगी, रास भी हो जाएगा सब कुछ होगा, अरे राधा जी के लिए ही उनका रास, राधा जी के लिए ही उनकी जितनी भी चेष्टा है, रास किस लिए हुआ, राशेश्वरी जी के लिए रास हुआ, राशेश्वरी राधिका जी आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी निज रूपतया कला गोलोक निवसत्म भूतो गोविंद मादिपुरुषं रमहं भजामि। ये ब्रह्म संगीता है, ब्रह्म संगीता है ना, ब्रह्मा जी कौन है, कृष्ण भक्त, इसलिए ब्रह्म संहिता में कृष्ण परक कृष्ण की प्रधानता देते हुए ये लिखा, रसग्रंथ नहीं है, रस का विचार ये तत्व विचार है, इसलिए कृष्ण जहां तत्व विचार होगा कृष्ण की प्रधानता होगी, जहां रस विचार होगा भाव विचार होगा राधा विचार होगा। इसलिए यहां पर कृष्ण तत्व को कह रहे हैं गोविंद, जहां जहां ले आएंगे ना सब गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी आनंद चिन्मय। ये क्या हुआ? आनंद से हुआ हमारा आदमी, अब चिन्मय से क्या हुआ?
सब
यह दोनों ले आए। रस वही रस, पहले वो भक्ति रस होकर के फिर रस स्वरूप एकदम विशुद्ध सत्व में आएगा। रस प्रतिभाविता भी, प्रतिभाविता भी किसके लिए आया? प्रभाविता प्रतिभाविता, भाविता माने क्या? जो भावना करता है, भावना करता है, भावना करते तथा अप्रतिभाविता कृष्णेन भाविता प्रतिभाविता। कृष्ण भाव कर रहे हैं, राधाएं सखियां तो कर रही हैं कृष्ण के लिए, किंतु प्रतिभाविता भी तो कृष्ण वहां पर कर रहे हैं। इसलिए क्यों? कि कृष्ण के समान ही वो है, निज रूप तैयार करा दी, अपने रूप तैयार। कृष्ण रूप सच्चिदानंद, लागनी संबित प्रधान, और ये गोपियां क्या हैं? वैसे ही हैं, निज रूप तैयार कला भी। कला भी माने, कला माने यहां समत रखो, अंश कला भी माने जैसे कृष्ण के कला है कर्णाधिशाही विष्णु, क्षीरोधिशाही विष्णु की ये सब रूप है, वामन इत्यादि, ऐसे गोपियां उनके ऐसे कला है नहीं। जैसे कृष्ण सर्वशक्तिमान है, ये हैं सर्वशक्तिमान। कृष्ण जैसे राष्ट्रेश्वर हैं, ये राष्ट्रेश्वरी हैं। कृष्ण नारायण इत्यादि के मूल अंशी हैं, ये भी जितनी भी लक्ष्मी आए उनकी मूल है। इसलिए वो इसी श्लोक में बतलाया गया, उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम चित्त जाना माने उरुक्रम के चित्त के की ज्ञान, अथवा उरुक्रम ही जिनके ज्ञान है। अर्थात कृष्ण यहां पर उनकी भावना करते हैं, और कहीं कहीं पर गोपियां भी उनको कर, दोनों दोनों को कर रहे हैं। प्रतिभाविता में भाविता प्रतिभाविता। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसका अर्थ कर रहे हैं, आनंद चिन्मय रस। चिन्मय रस कौन है? रसो वैसा कृष्ण है ना। अच्छा, तो आनंद चिन्मय रस कृष्ण ही हुए, रस द्वारा प्रतिभावी, आनंद चिन्मय रस द्वारा प्रतिभावी। आनंद चिन्मय रस तो कृष्ण ही है, उनके द्वारा प्रतिभावी। और एक दूसरा अर्थ भी इसको इस रूप में भी ले लेंगे, आनंद चिन्मय रस है उसके द्वारा गठित गठित। तो कृष्ण के प्रेम के रूप निर्ज्ञा से यह गठित है गोपियां, और उनमें दो और उनमें भी एक श्रीमती राधिका, जो गोपियां उनके सहित स्वस्वरूप में अखिलात्मभू आदि पुरुष गोविंद गोलोक में निमित्त निवास करते हैं। निवास करते हैं माने क्या? दोनों होगा, दोनों को बना सकते हैं, कृष्ण के द्वारा प्रतिभावित अथवा गोपियां कृष्ण को चिंतन कर रही, भावना कर रही, दोनों अर्थ लिया जा सकता है। कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं इन गोपियों, निवास माने क्या करते हैं, माने क्या क्या करते हैं निवास? दूर आदमी रहते हैं वो वहां रहते हैं, यहां रहते हैं बैठे हुए, जैसे कि शंकर जी बैठे हुए हैं समाधि लगाए हुए और पार्वती जी वहां पर बैठी हुई देख रहे हैं, पंखा चल रही है कभी कभी, ऐसा वहां पर कैसा ऐसा है? जब कृष्ण समाधि लगाए हुए हैं, राधा जी वहां पर बैठी हुई देख रही है, टुकुर टुकुर देख रही है, वहां निवास करने का ये तात्पर्य नहीं, विलासात्मक वहां पर नित्य नवीन विलास कर रहे हैं राधा और कृष्ण, आप उनकी सखियां जो है सहेलियां हैं वो लता की पताएं और पुष्प इत्यादि की भांति में वो सभी उसमें है, उनकी सेवा करते। नारायण गोलोक वैकुंठ धाम में कुछ ऐसे ही है, वहां पर ऐश्वर्य भाव है, और गोलोक में भी कुछ कुछ ऐसा है, किंतु वृंदावन में ब्रज में ऐसा नहीं, कहीं भी ऐसा है जो बैठी नहीं है, कृष्ण बैठे हैं। हाँ कभी कभी है ऐसे बैठे हैं कृष्ण, ऐसे बैठे हैं, किंतु क्या चल रहा है मन के अंदर में, कैसी भावना, रस उमड़ घुमड़ रहा, निकल नहीं रहा, ऐसा गोलोक बैकुंठ, गोलोक कभी नहीं है, बैकुंठ में नहीं है, यहां तक अयोध्या में नहीं है, कहीं नहीं। इसलिए ताज एवं निज रूप तया, वो दोनों एक ही समान है, कृष्ण के ही रूप है, वो स्वरूप है। कला भी माने पतला है, स्व एव आनंद चिन्मय रस प्रतिभादिताधीन आनंद चिन्मया आत्मकेन रसेन प्रतिखनम भाविताभिः निज रूपतया स्व रूपतया प्रसिद्धाभि कला भी लागनी शक्ति रूपा। कला माने क्या, लागनी शक्ति, ताभि कृष्ण में भी लागनी शक्ति है, नेत्ररस नहीं होगा, राधा जी में भी है, किंतु किसमें भी चित्तता अधिक है, राधा जी के प्रेम में अधिक विचित्रता है, राधा जी की समस्त विषयों में ऐसा। तारी ब्रज सुंदरी सा गोलोके निवसति तम आदि पुरुषम गोविंदम भजामि। कृष्ण ये कराये जैसे रस आस्वादन क्रिया सहायक जैसे सुन विवरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, किस लिए यही सब चीजों को लेकर के अवतरित होकर के जगत में ये क्रीड़ा करेंगे वैसे ही, और उसका छीटा फूटा कुछ प्रेम के रूप में वितरण करेंगे, इसीलिए वहां की दे रहे हैं वहां का विवरण, और उसी को लेकर के महाप्रभु जी कृष्ण ही आए हैं राधा जी का भाव लेकर। कृष्ण वही सब लीलाओं को यहां पर जगत में अवतरित कराते हैं, ये लीला एक भी यहां की नहीं है, तब एक इसमें वैशिष्ट है कि इस लीला में वहां की लीला में केवल उनके परिकर लोग ही योगदान करेंगे गोलोक वृंदावन में, और यह उनके परिकर और सब लीलाओं के जितने भी परिकर हैं वो लोग भी, जैसे ये महाप्रभु जी आए रामलीला के परिकर, हनुमान जी उसमें आ गए, बैकुंठ के पार्षद जय विजय और शिवास पंडित ये सब उसमें आ गए, द्वारका वाले जगदानंद प्रभु इत्यादि सब उसमें आ गए, और इसके अतिरिक्त देव देवताओं की स्त्रियां भी देवियां में, इसके अतिरिक्त साधक भी हैं जो वहां तक भाव अवस्था तक पहुंचे हैं, कोई प्रेमावस्था तक पहुंचे हैं, कोई गोपी के घर में अभी जन्म लिया है किंतु साधक थे अभी तक, अब वो कृष्ण के परिकरों के साथ में मिलकर के अभी सिद्ध हो, वो भी हैं, साधन वाले भी हैं, कुछ वैमुख लोग भी हैं, सभी इस लीला में आ
सकते हैं। लीला में देवस्त्रियां क्या करें,
देवस्त्रिया माने कृष्ण के जो अवतार जो हैं उनकी स्त्रियां, क्योंकि जब उनके पति भी आए हैं तो वो भी आए, वो भी रहेंगे किसी न किसी रूप में है, प्रस्ताव स्तुति गर्भ स्तुति कर रही है देव उनके मैया के, सची मैया के घर में देवता ये सब लोग स्तव स्तुति कर रहे हैं, जब महाप्रभु जी का जन्म हुआ तो वो लोग भी स्त्री रूप धारण करके और उनके साथ में गा रही है नाच रही है सब कुछ कर रही है, इस तरह से, और साधक भी उसमें है सिद्ध भी है,
और तपस्वी
इत्यादि भी है, सभी तरह के लोग
जो देख कर गया,
कोई उनको देख रहे हैं भगवान ही नहीं मान रहे हैं, ना भक्त ही मान रहे हैं, निमाई सब भांग लो ठीक, मर ज्यादा शक्ति न थी भांग लो सब मर्यादा ही उसने तोड़ दिया, ऐसे कहने वाले भी। और यदि वो लठिया चला सकता है तो हम किस विषय में लठिया नहीं चलाएंगे, हम भी लठिया चलाए उनको दिखला देंगे। वो सची पिसी माँ का लड़का अभी कल का छोकरा और हम लोगों को शासन करने आता है, ऐसे लोग भी। कृष्ण रखाए जय रस आस्वादन क्रिया सहायता, ऐसे सुनो विवरण कैसे किया ऐसे सुनो, किस लिए ये कर रहे हैं, इनका चैतन्य चैतामृत रचना करने का उद्देश्य क्या है, जो महाप्रभु अवतार लेने का उद्देश्य था वही इनका है क्या, इसी के माध्यम से कृष्ण नाम प्रेम दोनों का वितरण कर, उसके प्रति लोभ जगा रहे, किसी को यदि लोभ हो गया इनका मूल ये उद्देश्य, जो किसी भी अवतार में नहीं हुआ, भगवान की लीलाओं के प्रति रस के प्रति लोभ नहीं जगाया था। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, तुलसी रामायण पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, उसमें क्या होगा, कृष्ण कृष्ण है, राम है और सब है, अवतार नारायण है, सबकी आराध्य है, मर्यादा में पुरुष है, प्रेम का वहां पर कोई गंध नहीं। आइए सब बंधु की भांति में प्रेम के प्रति लोग जगाने वाले ये सब ग्रंथ है, हमारे गोस्वामियों का ये सब ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत है, इनका पढ़ना ये लोग जगा, इसलिए उनका भी वही उद्देश्य है। इन सब चीजों को अलग अलग करके साधारण लोगों तक जो रूप गोस्वामी के ग्रंथ नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते थे, वो क्या करेंगे, इसमें आधा बंगला और आधा संस्कृत है, लोग आदमी चेष्टा करेंगे भाई इसका अर्थ क्या होगा, सुनेंगे इसको सब करके वैसा ही लोग होने की एक बने। यदि कोई पढ़े और सावधानी से गारंटी है जरूर उसको लोग होगा अवश्य में, यदि नहीं होता है तो वो दुर्भागा, वो पढ़ा नहीं समझा नहीं। तो कृष्ण कराए जैसे रसास्वादन, कैसे रसास्वादन कराती हैं वो, श्रीमती राधिका जी उसको ये बतला रहे हैं, क्रीड़ा जहाँ जैसे जैसे क्रीड़े की क्रीड़ा करने की क्रीड़ा कराने की जैसे वो कराती हैं, सहाय जैसे हैं, ये सबका विवरण बतला रहे हैं। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, और उसको थोड़ा सा खोल करके नीचे आकर के बतला रहे हैं, कृष्ण की कांताएं तीन प्रकार की होती है, एक लक्ष्मी गण, एक लक्ष्मी, क्योंकि नारायण कृष्ण से अभिन्न है इसलिए ये भी कृष्ण की ही कांता है, और राधा जी की ही प्रकाश है इसलिए वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में राधा जी हैं, अपने प्रकाश के रूप में वैभव प्रकाश के रूप में ये वैकुंठ में विराजी, जो नारायण की सेवा करते हैं माने कृष्ण की सेवा करते हैं, नारायण और कृष्ण तत्व का एक है, इसलिए पूरे मनीषी का नारायण यहां पर ऐश्वर्य प्रधान है, माधुर्य बहुत कम, एकदम कम, प्रलुप्त सा। लक्ष्मी जी हैं उनकी कांता, किंतु वो नारायण से मन नहीं कर सकती, नारायण जैसा रखेंगे वैसा ही रहेंगी, सब समय चरणों में रहेंगी, कभी कभी बस सक्षम में भी जाती है किंतु जड़ बन करके, उस समय चित विलास उनका कोई नहीं, बल्कि चरण की प्रलोभते समय में कुछ रहती है, बस दासी की भांति अवस्थित रहेंगी, और पूरे महिषी गण पूर्व में अटक द्वारका और मथुरा पूरी को, यहां पर रुक्मिणी सप्तमान इत्यादि 16108 रानियों के रूप में राधा जी ही वहां पर, ये भी कांताएं हैं, किंतु यहां पर ऐश्वर्य अधिक, माधुर्य है किंतु कम बढ़ा हुआ है, इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य के ऊपर में सब कांताओं का श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व है, उस पर ऊपर में निर्भर करता है। भजंगनारूप और कांता अनुसार ये कांताओं की सार हैं, ये ब्रजंगना ब्रज की जो अंग बनाए हैं गोपियां हैं, राधा होते कंता गणेश विस्तार, ये तीनों जो है राधा जी से ही इनका विस्तार हुआ। वही बैकुंठ में लक्ष्मी, अयोध्या में सीता और द्वारका में महिषी गण। यहाँ तक वहां पर श्री भू लीला ये तीनों है, कल बतलाया था। श्री माने पालन पोषण करने वाली, प्रेम को प्रकाश से प्रेम से पालन पोषण करने वाली, और भू माने होना, क्या होना, सृष्टि इत्यादि, सृजन इत्यादि का कारण। वही जगत में ये जो दुर्गा इत्यादि जो सृजन करती हैं, उसी में वो उनका वो माने विकार है। भू माने यही सत्यभामा जी भू यहाँ पर भी, और नीला माने नील रंग की दुर्गा, ये क्या करती हैं, संहार करने वाली शक्ति। किंतु वहां पर ये सब शक्तियां में ये सब रहता है पोटेंसी के रूप में, वहां पर कृष्ण नारायण की सेवा करती है, और वही जगत में अपना रूप धारण करके कोई अर्थ वाली हो जाती है पालन पोषण करने वाली चंचला लक्ष्मी, और एक हो जाती है भू माने सृष्टि शक्ति, उसमें प्रकृति के रूप में वो करती है, और कोई संहार करने वाली। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, कृष्ण जैसे अवतार करते हैं अंशनी राधा हो के तीन गणता, वैसे ही राधा जी से जैसा इन तत्वों को जान लेने पर अब दुर्गा काली चिंदा और सब जितनी शक्ति इनको आप पूजन भजन करने की स्पीहा नहीं। अभी आ रही है कल से, कल से नौ दुर्गा है, कल से कह रहे हैं नौ दुर्गा। रामचंद्र जी का लीला से रामचंद्र जी के लीला से संबंधित, किंतु इन लोगों ने ऐसा बना रखा जो राम का कोई गंध नहीं हो करके नौ दुर्गा, बड़ी दुर्गा मंदिरों में भीड़ होगी और राम को कोई नहीं, राम की लीला वहां पर एक होगी किंतु दूसरे उन लीलाओं से कुछ ग्रहण नहीं किया जा सकता। जिस रूप में आजकल इनका रूप हो गया है क्या हम ग्रहण करेंगे, राम को जलाते हुए देखेंगे कौतूहल, रावण को जलाते हुए देखते हैं, रामचंद्र जी ने बाण मारा वो जला, इसका तात्पर्य क्या है, हंसी दिलग्गी और आनंद माने इसमें मजाक हंसी या इसमें बदल जाता है, वहां पर दुकानें लग जाएंगी चाट की और सब बस उसमें चले जाएंगे, देखेंगे वही सब, लाख लोग जा रहे हैं तो हम भी चले देखें, उस चीज को देखने नहीं जाते, किस चीज को देखने जाते, भरत और रामचंद्र जी में जो क्या संवाद हो रहा है, हनुमान की कैसी सेवा है, सीता जी की कैसे राम की सेवा है, कोई बताने वाला और समझाने वाला समझने वाला है, इसलिए धीरे 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 सब चीजें लुप्त होती चली जाती है। कितना बच गया,
625
अब अंधकार हो जाता है। वैभव वन जेनो तार अंग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महिषी प्रति, वैभववन जेनो तार अंग विभूति, अंग की विभूति, जैसे इस जगत में कृष्ण कह रहे हैं कि देवता लोग मेरी विभूति हैं,
ऐसे देवियां
देवियां भी राधा जी की विभूति है। तो जो जब ये दुर्गा काली और सब जो शक्तियां हैं सरस्वती इत्यादि जब इनकी विभूतियां हैं तो वो कैसी होंगी, तो इनकी पूजा नहीं कोई करेगा, ये जो चीज को देती हैं वो ध्वंसात्मक है, उसे कुछ भी लाभ नहीं होने का, उसे ये जागतिक तामसिक और राजसिक वृत्तियां बढ़ेंगी जो वो देवियां देती हैं, सात्विक तो दे ही नहीं सकती, ये सब देंगी, इसलिए कहते हैं इनके वैभव में इतना है तो वो मूल शक्ति राधा जी ने क्या है, किंतु इन सबको छोड़कर के राधा जी की सीता जी की कोई उपासना नहीं करेगा, भगवान की उपासना नहीं करेगा। तो अंग की विभूति, विभूति मैंने क्या, जैसे अंग में विभूति माने क्या होता है, एक तो भस्म होता है, यहां पर भस्म नहीं होगा, विभूति माने यहां पर विभूषण करने वाला अलंकार को दिया जा सकता है, विभूति माने कुछ शक्ति भी होती है, वैभव। वैभव भी बहुत रूप में, एक आदमी एक स्त्री सोने से आभूषण से सिर से लेकर नक्षिक तक एकदम सोने के आभूषणों से हीरा जवाहरातों से लदी हुई है, इसकी अनुभूति देखो, ये भी विभूति। तो यहां पर ये बाहरी अंग है ये सब देविया इत्यादि, और रुक्मिणी सप्तभामा है वो बाहरी नहीं है, अंग की विभूतियां है। बिंब प्रतिबिंब महिषी प्रति, महिषियों में सीता जी में, लक्ष्मी जी में, और अवतारों की जो स्त्री लक्ष्मियां हैं इनमें कहीं बिंब और कहीं प्रतिबिंब, कहीं अंश कभी अंशों का अंशों का अंशों का अंश कला, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठति, वहां भी कला और इत्यादि है। कला माने क्या, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादिद्याकुलम लोकम निरयंती जुगे, कौन निरयंती जुगे जुगे, कला अंश कृष्ण नहीं वो जुग जुग में नहीं, वो केवल एक बार आते हैं ब्रह्मा जी के वो पूर्ण आते हैं। इसलिए ये सब जितनी हैं महिष्या से लेकर के बैकुंठ में जो लक्ष्मी आई है सब उनकी अंश और अंशों की अंश की अंश की कला कला इत्यादि हैं। लक्ष्मी गंतार वैभव विलास अंशरूप, जैसे कृष्ण के विलास नारायण हैं ऐसे राधा जी के अंश के विलास मने ये हैं लक्ष्मी विलास अंश। महर्षिगण प्राभव प्रकाश स्वरूप, अब जैसे द्वाराधीश जो कृष्ण है, कृष्ण के मैंने ब्रजेंद्र नंदन के प्राभव प्रकाश हैं, ऐसे राधा जी के प्राभव प्रकाश ये सब जान करके क्या होगा हरे कृष्ण करेंगे, बस जानना पड़ेगा, आज न जानो कल न जानो परसों जानना पड़ेगा, नहीं तो प्रासंग ज्ञान होकर के नहीं होगा। और राधा कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ आराध्य हैं ये समझ में नहीं आएगा, उस समय में द्वारकाधीश में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं मालूम होगा, नारायण की सेवा में और कृष्ण की सेवा में कोई अंतर नहीं। देखिए मथुरा में बहुत भक्त लोग हैं किंतु मैं समझता हूं कि बहुत ही कम ऐसे हैं, दो एक बिरले होंगे जो द्वारकाधीश में और कृष्ण में कोई वैशिष्ट समझते, और वही है एक ही है समझ में, राधा जी और रुक्मिणी दोनों एक ही हैं, कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। ये तो महाप्रभु जी की विशेष कृपा है कि वो कुछ जगत में देने के लिए आए, हम लोग ही कुछ कुछ समझ रहे हैं, जब यही बातें कहीं द्वारकाधीश में जाकर तो झगड़ा हो जाएगा कि आप लोग भेद भेद कर रहे हैं। आकाश स्वरूप भेदे ब्रज देवीगण काय विरूपता रस रकार, ये रस के कारण ये सब करती हैं राधा जी, विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं ऐश्वर्य रस लक्ष्मी बन जाएंगे। हाँ काय विरूप आकार स्वरूपे भेदे, आकार और स्वरूप, स्वरूप और आकार भेद से ब्रज देवीगण काय विरूप तार रस रकार, रस के कारण में ये सब स्वरूप और आकार इत्यादि का भेद होता है तो एक ही वस्तु, इसलिए रसेन उत्कृष्टते कृष्णा रूप में सारस्य स्थिति, उसी प्रकार से इसमें भी लगाओ रस के उत्कर्षता से वही राधा जी अनंत सखियां गोपियां और फिर ब्रज द्वारका में सीता जी के रूप में बैकुंठ के रूप में, यह सब रस के लिए। स्वरूप माने बहुत सा हो सकता है, आकार स्वरूप, आकार का जो रूप है वो स्वरूप ही हो सकता है, आकार माने ऊपरी आकार और भीतर का स्वरूप भीतर का भाव इसको भी कह सकते हैं।
रूप कहने से सौंदर्य काम
भेदे ब्रज गोपीगण, कायदी रूप तार रसर कारण, बहुत गोपी आगे बतलाएंगे
केवल एक राधा की रानी से नहीं होगा, इसलिए वो कायदे के रूप में अपने आप प्रकाशित होती है। कभी केवल यदि मीठा खाने के लिए दे दो रबड़ी ही रबड़ी, वो अधिक थोड़ा सा खाने के बाद में रुचि बंद हो जाएगी। और उसमें कोई चटनी रहे, नमकीन थोड़ा सा ले ले बीच बीच में, कभी तीखा ले ले, तो उसको रुचि को बढ़ाएगा। और कृष्ण की खाने की चीज नमकीन, और राधा की है केवल यदि मान लो कि केवल मिठाई, तो फिर कैसे होगा। इसलिए वो भी इसलिए ऊपर से नीचे तक कृष्ण को आनंदित करने के लिए सब प्रकार के भावों को लेकर के उतर आज यहीं तक रहे।
Ah!